We'll take a moment to pray and start this meeting.
ये प्रार्थना में हम समय को बिताएंगे, इस मीटिंग को आरंभ करेंगे.
Praise Lord, thank you Father God for this wonderful time that you have blessed us with.
पिता, इस सुंदर समय को जो आपने हमें आशीषित किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं.
Thank you Father God for this wonderful opportunity that you have given us.
प्रभु, ये सुंदर मौका जो आपने हमें दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं.
Thank you for this church, O Lord Father, who has given this opportunity.
प्रभु, इस कलीसिया के लिए, इस मौके के लिए हम धन्यवाद करते हैं.
O Father, as we stand here, O Lord,
जैसे हम पिता यहाँ पर खड़े हैं,
help us, O Lord.
प्रभु, हमारी सहायता कर.
टू शेयर समथिंग फ्रॉम योर वर्ड, ओ लॉर्ड.
प्रभु, ताकि तेरे वचन से हम कुछ बांट सके.
टू शेयर समथिंग फ्रॉम योर विल, ओ लॉर्ड.
प्रभु, तेरी इच्छा में से हम कुछ बांट सके.
थैंक यू वंस अगेन फादर फॉर.
प्रभु, धन्यवाद और एक बार पिता.
मे योर होली स्पिरिट लीड अस, गाइड अस, ओ लॉर्ड.
पवित्र आत्मा आपकी हमारी अगुवाई करे और सहायता करे.
थैंक यू फादर गॉड फॉर.
पिता, हम धन्यवाद करते हैं.
इन जीसस नेम आई आस्क दिस प्रेयर.
यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं.
आमेन.
आमेन.
That's a very serious look everyone is giving.
बस काफी सारे गंभीर दिख रहे हैं यहाँ पे.
Can we just turn to Matthew chapter 25?
और मत्ती उसका 25 अध्याय में हम जाएंगे.
There's a parable of virgin, 10 virgins.
और 10 कुमारियों का दृष्टांत यहाँ पर है.
Yes. Chapter 25, verse 1, it goes, Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet their bridegrooms. Now, 5 of them were wise and 5 were foolish. Those who were foolish took their lamp and took no oil with them, but the wise took oil in their vessels with their lamps. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. And at the midnight, a cry was heard, Behold, the bridegroom is coming. Go out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, Give us some of your oil, for our lamps are going out. But the wise answered, saying, No least, there should not be enough for us and you, but go rather to those who sell and buy for yourself. From 1 to 9.
Ek se 9 vachan. The swarg ka rajya us 10 kumariyon ke saman hoga. जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी. मूर्खों ने अपनी मशाले तुली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया. जब दूल्हे के आने में देर हुई, तो वे सब ऊँगने लगी और सो गई. आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो. तब वे सब कुमारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है.
Verse 10, And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut.
और जब वे मोल लेने को जा रही थी, तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया.
While I was traveling from office to my home, I was just thinking about this thing, like what, you know, one thing what every believer is waiting for.
और जब मैं अपने ऑफिस से घर के लिए यात्रा कर रहा था, इस बात को मैं सोच रहा था कि एक विश्वासी कौन सी ऐसी चीज के लिए बाट जो रहा है.
One thing is Lord's second coming.
और वो एक है कि वो यीशु मसीह का दूसरा आगमन.
एंड वन थिंग दैट वी हैव टू डू इज टू बी प्रिपेयर्ड एवरी टाइम.
और ये एक चीज हमें करना है कि हमें हर समय हमें अपने आप को तैयार करना है.
देयर इज नोवेयर इन द बाइबल इट इज मेंशन दैट यू नो व्हेन लॉर्ड विल कम, द डेट इज नॉट गिवन.
और बाइबल में कहीं पर भी ऐसी कोई ऐसा दिन नहीं लिखा गया कि जब यीशु मसीह का आगमन होगा.
बट यस, द साइंस हैज बीन गिवन टू अस.
लेकिन उसके बारे में चिन्ह जरूर दिखे गए हैं.
दैट वी कैन सी इन आवर डेली लाइव्स दैट मोस्ट ऑफ द साइंस आर गेटिंग ट्रू और हैपनिंग.
और हमारे प्रतिदिन के जीवन में इन चिन्हों को हम पूरा होते हुआ देख रहे हैं.
There's wars, there's betrayal, there's killing for, you know, killing people in name of religion, everything.
और हर जगह पे युद्ध हो रहे, घात हो रहे, हर और धर्म के नाम पे कई सारी चीजें हो रही है.
Maybe the Lord's coming is very soon, very very soon.
और हो सकता है यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है.
I really need to be prepared for him.
और मुझे इसके लिए खुद को तैयार होना जरूरी है.
I was just imagining a situation.
और मैं इस घटना को जैसे स्मरण कर रहा था.
वेर एन आई हैव अ फाइट विद माई क्लोज वंस और माई रिलेटिव और माई वाइफ.
और जैसे मेरे रिश्तेदार या मेरी पत्नी वहाँ है.
एंड आई एम लिटिल एब्सेंट माइंडेड राइट दैट टाइम.
और उस समय मेरा जो ध्यान उस जगह पर नहीं है.
आई एम इन वेरी फ्यूरियस मोड एंड आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू एनी वन. आई एम वेरी एंग्री.
और मैं बहुत ही क्रोधित हूँ. मैं ऐसे दिमाग में हूँ जो मैं किसी से बात नहीं करना चाहता.
एंड मैं बहुत
गुस्से में हूँ.
बाय दैट टाइम इफ लॉर्ड कम्स,
और अगर उस समय यीशु मसीह का आना होता है,
ही विल टेक मी,
और वो कहेगा
ही विल टेक मी,
और वो मुझे लेगा,
बट देयर वुड बी आई वोंट बी एबल टू फेस हिम इन द जजमेंट थ्रोन,
और उस न्याय के सिंहासन के सामने मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा.
मे बी आई विल गेट अ नेगेटिव मार्किंग फॉर इट,
और शायद नकारात्मक मुझे पॉइंट वहां पर मिलेंगे.
देयर वुड बी अदर नेगेटिव मार्किंग्स टू,
और दूसरे भी एक ऐसे नकारात्मक बातें
होंगी, बट बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑल्सो आई मे गेट अ नेगेटिव,
लेकिन इन कारणों की वजह से नकारात्मक ये पॉइंट मुझे मिलेंगे.
आई रियली डोंट वॉन्ट दैट,
और मैं ऐसा नहीं चाहता.
एंड आई डोंट वॉन्ट इट, यू नो, लॉर्ड टू कम एट दैट वेरी मोमेंट वेन आई एम वेरी फ्यूरियस और समथिंग आई एम डूइंग रॉन्ग,
और मैं नहीं चाहता कि जब मैं कोई बुरा कर रहा हूं या गुस्से में हूं, ऐसी कोई चीजें कर रहा हूं, तब यीशु का आना हो.
बट समथिंग बाइबल डजंट से लाइक व्हाट इज द टाइमिंग, दैट मींस आई डोंट नो व्हेन ही इज गोइंग टू कम, सो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड एवरी टाइम.
बाइबल में कहीं पर भी उसके आने के बारे में नहीं लिखा है, इसके लिए मुझे हमेशा तैयार रहना है उसके आने के लिए.
It's written within a blink of an eye, everyone would be taken.
और वचन में लिखा है कि आंख के झपकने के उस पल में हम सब ले लिए जाएंगे.
Lord will not give me a time to go and reconcile, and He'll wait for me.
और यीशु हमें वो समय नहीं देगा कि हम जाकर हमारे भाइयों के साथ मेल मिलाप कर वापस लौटे.
I really want to take it to my heart that, you know, whenever I'm having an argument with my wife or with someone else or a fight.
और मैं ये सच में ये इसको गंभीरता से लेना चाहूँ, जब भी किसी और के साथ, मेरी पत्नी के साथ कोई भी विवाद या झगड़ा अगर होता है,
आई डोंट वॉन्ट टू कीप दैट एंगर विद इन माई हार्ट टिल द नेक्स्ट डेज ब्रेक,
और मैं उस गुस्से को दूसरे दिन तक मैं रखना नहीं चाहता हूँ.
आई रियली डोंट वॉन्ट टू, यू नो, कीप दैट that anger within my heart or to think something negative or do something wrong to my relative or someone else.
aur wo nakaratmak baatein, wo krodh ya kisi ko bura karna, ye baatein main apne man mein apne hriday mein nahi rakhna chahta.
I really understand that to say it is very easy,
aur ye bahut hi aasan hai bolna,
but then what happens is we have to be prepared, and then we can't take that, and we being a believer can't do anything wrong, and we shouldn't be doing anything wrong.
aur vishwasi hone ke nate hame taiyar rehna hai, aur uske nate hum koi bhi buri cheez ya galat cheez nahi kar sakte.
Even if it is very tough for us to forgive someone else, let's pray over it, you know, may Lord change our mind.
और ये बहुत कठिन होता है कि हम किसी को माफ करें, लेकिन हम प्रार्थना करें कि प्रभु अनुग्रह दे, हमारे मन को बदले.
लेट अस ऑल स्ट्राइव टू बी परफेक्ट लाइक हाउ जीसस क्राइस्ट वाज.
हम हमेशा यीशु मसीह में सिद्ध होने के लिए यत्न करें.
आई नो द स्टैंडर्ड्स, द बार व्हिच लॉर्ड हैज केप्ट टू बी प्योर एंड बी, यू नो, स्पिरिचुअल इज वे टू हाई.
और यीशु मसीह ने जो स्तर हमारे लिए रखे पवित्रता के लिए, सिद्धता के लिए, वो बहुत ऊंचे है.
बट आई वॉन्ट टू ट्राई, दो आई मे फॉल, दो आई मे मेक मिस्टेक्स, बट स्टिल आई वॉन्ट टू ट्राई.
अगर मैं गलती करूँ, अगर मैं गिर भी जाऊं, लेकिन फिर भी मैं प्रयत्न करते रहना चाहता हूं.
I want to acknowledge my mistakes so that, you know, Lord is faithful to forgive it.
और मैं अपनी गलती को मान लेना चाहता हूं. परमेश्वर विश्वास योग्य है उसे माफ करने के लिए.
And I want to keep my conscience clean every time.
और मेरे विवेक को निरंतर मैं शुद्ध रखना चाहता हूं.
In Revelation it's written, Lord doesn't like lukewarm water. He'll spit it out.
और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि सरगम जो पानी है, प्रभु उसको पसंद नहीं करता, वो उसे थूक देगा.
I want to have a burning spirit within me.
और मेरे भीतर में एक उबलता हुआ आत्मा मैं चाहता हूँ.
Let us all strive to have that burning spirit so that Lord, when He comes, He doesn't spit us out.
और हम वो जलती हुई वो गर्म आत्मा को हमारे अंदर रखे, ताकि वो जब आए वो हमें थूक न दे.
Or let us not be the 10 like 5 virgin foolish virgins who didn't carry oil and they weren't prepared for Lord's coming.
Aur us 5 kuwari murkh kuwari ke saman na ho jo apne sath kuppi mein tel lana bhul gayi.
Let us all strive to be prepared all the times and wait for our Lord to come.
I am yatna kare ki hum parmeshwar ke aane ke liye hamesha taiyar rahe.
May His name be glorified. Thank you.
Prabhu Yeshu ko mahima mile. प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. पिछले दिनों में प्रभु ने मुझे एक चीज़ सिखाई जो मेरे जीवन में कमी थी. उस चीज़ की मैं अपने भाई के मेरे छोटे भाई के जैसे शादी थी उसके लिए हम गए थे, तो उसमें 3 गाड़ियाँ थी, और जिसमें मेरा भाई था वो बहुत ही अच्छी गाड़ी हमने हायर किया था, उसमें हम लोग जा रहे थे. लेकिन प्रॉब्लम था, वो 5 घंटे का जो रास्ता था उसमें दूसरी एक बस थी, उसमें दूसरा एक कार था, सारे पुराने थे शायद, और दूसरी एक कार थी, 3 कार थी. और दिक्कत ये मुझे हो रही थी कि जब हम उस रास्ते में जा रहे थे तो रास्ता पूरा खाली था, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, लेकिन हमारा कार बहुत ही धीरे चल रहा था, 70-80, मतलब उस कार की कैपेसिटी थी कि वो 110-120 जा सकता है. हमको बस ओवरटेक करके जा रहा है, ट्रक ओवरटेक करके जा रहा है, और ये 5 घंटा मेरे लिए, मतलब लिटरली मेरे लिए एक स्ट्रगल था. मतलब मेरे लिए वो स्पीड जब मुझे नहीं मिल रहा था, वो जिस मैं आगे सबसे आगे बैठा था और मैं अंदर उसको ड्राइवर को बोल रहा हूँ, 2-3 बार मैंने बोला, लेकिन मेरे अंदर एक गुस्सा जैसा, मैं वो उस जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाया। जब तक मैं वहाँ पर पहुँचा, बार बार मुझे कॉल आ रहे, हम आगे निकल गए हैं, हम यहाँ पे खड़े, आप कहाँ पर हो। और इस ड्राइवर को बार बार बोलने पर भी ये फास्ट नहीं चला रहा है, 70-80 मैक्स, और उस गाड़ी में कैपेसिटी है, बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं है, और इतना अंदर मुझे गुस्सा आ रहा है, बार बार मैं मोबाइल ले रहा हूँ, ऐसे हाथ को वो कर रहा हूँ, बहुत क्रोध आ रहा था। लेकिन जब वापस मैं लौट रहा था, प्रभु ने एक चीज़ दिखाई कि जो मुझ में कमी थी, मेरे अंदर, यू नो, कई बार जो उसमें लिखा है, हम पढ़ेंगे याकूब, उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, याकूब का पहला अध्याय और उसका 3रा वचन लिखा है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। और ये वचन जब परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया तो, और ये वचन में लिखा है कि धीरज को अपना पूरा पूरा काम करने दो, और वहाँ पर देखा कि मेरे अंदर धीरज नहीं था, मैं चाह रहा था कि मैं सबसे पहले पहुँचूँ, सबसे स्पीड में पहुँचूँ, और मेरे पास वो एबिलिटी है, मेरे पास वो योग्यता है, क्षमता है मेरी गाड़ी के अंदर, लेकिन फिर भी मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ। और सबसे बड़ा ये वहाँ पर ड्रॉबैक मेरे लिए था कि नियंत्रण मेरे हाथों में नहीं था, मुझे लग रहा था कि उस ड्राइवर को मैं उतार दूँ और मैं जाकर बैठ जाऊँ वहाँ पर और मैं उसको स्पीड में लेके जाऊँ, लेकिन वो मुझे शायद ड्राइव करने नहीं देता। और तब मैंने देखा कि मेरे जीवन के अंदर कई बार उस 5 घंटे की यात्रा के जैसा मैं समय बिताता हूँ। बहुत अच्छा रास्ता वो था, पहाड़ थे, सब कुछ था, लेकिन बिल्कुल मैं एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा था कि ये ड्राइवर बहुत स्लो चला रहा है। और प्रभु ने मुझे दिखाया कि आत्मिक जीवन के अंदर कई बार मैं भी उस आत्मिक सफ़र को एंजॉय नहीं कर पाता क्योंकि मेरे अंदर धीरज की कमी है, मैं धीरज से प्रभु की बात नहीं जो पाता हूँ, मैं हर चीज़ें हमेशा अपने समय पर अपने तरीके से चाहता हूँ। और जब प्रभु ने इस बात को दिखाया, और एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 46:46, और वहाँ पे 10 वचन में लिखा है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। इंग्लिश में लिखा है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम लॉर्ड। और ये चुप रहना, ये शांत रहना, ये धीरज से एक बने रहना, ये बहुत ही कठिन बात है। अगर बोलना कि कहीं पे बोलना है, कहीं पे कुछ भी करना है तो बहुत आसानी से हम कर पाते हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि प्रभु मेरी मुझ में ये कमी है और इसके वजह से बहुत सारी आत्मिक आशीषों से मैं वंचित रहता हूँ, प्रभु जो निरंतर मेरे जीवन के अंदर आनंद बहना चाहिए, निरंतर एक धन्यवाद हमेशा बहना चाहिए, वो धीरज न होने के कारण नहीं हो पाता है। मैं हमेशा चीज़ों को एक डेडलाइन कर देता हूँ, उसको वो समय पर समाप्त करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस ड्राइव से मैंने सीखा कि प्रभु वही मेरे आत्मिक जीवन में कमी घटी है, तेरे वचन जो मेरे जीवन में है, कई बार उस वचन को पूरा होने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन प्रभु वो धीरज को सिखाना चाहता है। और जब हम लोग एंड में आ गए, वो गाड़ी जब रात को घर पे आया, तब मैंने उस ड्राइवर को पूछा कि यार आपकी गाड़ी में क्या स्पीड लिमिट है, क्या आप फास्ट नहीं चला सकते, क्या इतना लेट हो गया, सब हमारा खाना खाने लग गए, हम लोग अभी आए। तो उसने बोला, उस ड्राइवर ने ये उत्तर दिया मुझे कि मेरे बॉस ने मुझको ऐसा बोला है कि ये गाड़ी शादी में जा रही है तो सेफली ड्राइव करना, मैं 140 में भी चला सकता हूँ लेकिन सेफली ड्राइव करना, क्योंकि दूल्हा और दुल्हन इस गाड़ी में आएंगे और मैं भी उसी गाड़ी में जा रहा था। और मेरी आंखें जब खुल गई, कई बार मैं एकदम क्विक और रैश ड्राइविंग को चाहता हूँ लेकिन प्रभु सेफ ड्राइविंग को चाहता है। और तभी वो जो ड्राइवर है अपने मालिक के उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था जो मुझे नहीं पता था। और कई बार हमारे जीवन में भी उस मालिक जो ओनर प्रभु यीशु है, उसके इंस्ट्रक्शन मुझे नहीं पता होते, इसलिए मैं भी उस एजिटेशन या उस धीरज में नहीं चल पाता हूँ, जैसे वचन इक्लिसियास्टिक में सबब कि उसके समय में सारी चीज़ों को प्रभु सुंदर बनाता है। जब शादी के लिए सारी चीज़ें बहुत ही विपरीत थी, बहुत बार मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था, कई बार लगता था कि प्रभु ये कैसे संभव हो सकता है, प्रभु ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन प्रभु उस धीरज से, प्रभु कई बार उस तूफानों को नहीं हटाता लेकिन तूफानों में जाने के लिए मेरे जीवन में अनुग्रह को बढ़ा देता है। और कई बार जहाँ मुझे स्तुति करनी चाहिए थी, धीरज न होने के कारण मैं वहाँ पर कुड़कुड़ाया, कंप्लेन किया कि प्रभु ये क्या है, वो क्या है, औरों को आसानी से मिल रहा है और आगे जा रहे हैं, जैसे और वो बस और ट्रक ओवरटेक करके जा रहा था, लेकिन प्रभु ने बताया कि आई एम प्लानिंग फॉर अ सेफ ड्राइव, नॉट अ क्विक ड्राइव। और प्रभु को मैंने बोला कि प्रभु काश मैं उस जर्नी को एंजॉय कर पाता जो 5 घंटे का था, मैंने ऐसे ही उसको वेस्ट कर दिया, मैं गुस्से में रहा, ड्राइवर के ऊपर गुस्से। उसका वो जवाब सुनकर मुझे अपने आप पर वो हो रहा था कि काश मैं उसको पहले पूछ लेता, भाई तू क्यों इतना स्लो चला, उसके ऊपर गुस्सा करने के बजाय। और प्रभु ये सिखाना चाहता है मेरे जीवन के अंदर कि उस धीरज को प्रभु अपने मेरे जीवन में सिद्ध काम करना चाहता है। और एक बात, जब धीरज का संपूर्ण काम मेरे जीवन में हो जाता है तो मैं हर समय प्रभु को स्तुति दे सकता हूँ, हर समय मैं आनंदित रह सकता हूँ। ऐसे समय जब आते हैं जब मैं अपने आत्मिक जीवन को बहुत ही आनंदमय नहीं जान पाता हूँ, बहुत ही बोरिंग या बहुत ही ऐसे भारीपन सा, अनइजीनेस सा लगता है, मैं चाहता हूँ कि आत्मिकता में एकदम आनंदित रहूँ, लेकिन नहीं। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि मैं धीरज में नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं प्रभु के समय उसके तरीकों को नहीं अपना पा रहा हूँ। और प्रभु ने इस बात को मेरे जीवन में एक डैशबोर्ड की जैसे, जैसे डैशबोर्ड में सब कुछ दिखता है, वो डैशबोर्ड मुझे दिखाया है, किरण दिस इज लैकिंग इन योर लाइफ। और मैंने प्रभु से अनुग्रह मांगा कि प्रभु अगर तू ओनर है, अगर तू ड्राइवर है, वो गाड़ी कितनी भी स्लो चले और कितनी भी फास्ट चले, लेकिन मुझे शांत रहकर, बी स्टिल रहकर प्रभु को, यू नो, प्रभु तेरी स्तुति करना है बिना कुड़कुड़ाए। और अंत में जब हम धीरज को रखना मैं जान जाता हूँ, तब मैं लोगों की जो बदनामी है, लोगों की जो बातें हैं, वो मुझ पर हावी नहीं होती। जब मुझ में धीरज की कमी होती है तो मैंने देखा कि किसी की भी कमेंट हो, कोई भी मेरे विरोध में बोल रहा है, तो तुरंत मैं उस कमेंट को काउंटर अटैक करने की कोशिश करता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा है समथिंग। बट जब धीरज आ जाएगा मेरे अंदर तो मैं हमेशा प्रभु में सुरक्षित रहूँगा। और मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु मैं ये करना चाहता हूँ, मैं तुझ में पूरी तरह से सिक्योर होके अपने आप को, जैसे हम हेलमेट पहन लेते हैं तो बाहर का एटमोसफियर क्या है, बाहर कौन बात कर रहा है, कितना टेम्परेचर है, कितनी ठंडी है, कुछ नहीं पता चलता। वैसे मैं प्रभु यीशु में उस तरह सुरक्षित रहना चाहता हूँ कि लोगों की बातें, लोगों के विरोध या कटाक्ष की बातें हैं, मुझ पर हावी न हो जाए। और प्रभु मुझे सच में हम सबों को अनुग्रह दे, ये मैं अपने बारे में पहले कह रहा हूँ कि अपने आप को जाँच कर कि उस कमी को मैंने देखा कि प्रभु धीरज को अपना संपूर्ण काम करने दे, वो सिद्ध कार्य प्रभु मेरे और हमारे जीवन में उसके अनुग्रह के द्वारा करे। जैसे अभी हमने वचन सुना कि हमें यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना है और उस सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है, तो प्रभु सच में हम सबों की मदद करे कि हम धीरज को अपना पूरा कार्य करने दे। आमीन।
प्रेज गॉड फॉर व्हाट आई हैव हर्ड।
प्रभु की स्तुति हो जो आज हमने अभी सुना।
I like to share from Matthew chapter 10 verse 29 and 31, 29 to 31.
मत्ती उसका 10 उसका 29 से आगे हम पढ़ेंगे।
Something really blessed me how much a Lord God cares for all of us.
और एक चीज को मैंने सीखा कि कितना प्रभु हमारी चिंता करता है।
And he's given us, Jesus has given us two examples of how much he cares for all of us.
और यीशु ने यहाँ पे दो उदाहरण दिए कि वो कितनी चिंता हमारी करता है।
In verse 29, chapter 10, Matthew chapter 10, 29.
मत्ती 10 उसका 29 वचन।
Are not two sparrows sold for a cent, and yet no, not one of them will fall on the ground apart from your father.
क्या पैसे में दो गोरे नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती।
Are not two sparrows sold for a cent? Two sparrows, and it's compared to a cent here. What is a cent?
और यहाँ पे लिखा है कि क्या पैसे में दो चिड़िया नहीं बिकती?
In the olden days, cent was in today's one rupee coin. You can, you know, term it like that. It was the least value then.
और उस समय में जो ये cent, जो पैसा जो यहाँ पे लिखा गया है, वो यहाँ के एक रुपए के समान जो था, उसकी बहुत ही कम कीमत थी.
And in Luke it says five sparrows were sold for 2 cents. That means you know more sparrows could go for 2 cents, which means the value of a cent was so less.
Aur wahan luka ke andar likha hai ki 2 cent matlab do us paiso ke andar 5 chidiya bikti thi, matlab us paise ki kimmat jo thi wo bahut hi kam thi.
And then it says, and yet not one of them will fall to the ground apart from the father.
Aur yahan pe likha hai ki pita ki ichcha ke bina unme se ek bhi bhoomi par nahi girti.
I mean, if a father can care for a sparrow, he'll obviously care for all of us.
Agar wo pita chidiyon ki chinta kar sakta hai to sach mein wo hamari bhi chinta kar sakta hai.
Verse 30, but the very hairs of your head are all numbered.
और 30 वचन में लिखा है तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं।
Imagine all your hairs on your head are numbered.
और सोच के देखिए कि बाल के, हमारे सिर के सारे बाल गिने हुए हैं।
I can't count the number of hairs on my finger and on my head everything is numbered.
और मेरे हाथ में या जहां कम है वहां मैं उस बालों को नहीं गिन सकता, लेकिन मेरे सिर के बाल प्रभु ने गिन के रखे हैं।
And if one falls, I may not know, but God knows.
और उसमें से एक भी अगर गिर जाता है मुझे नहीं पता चलता, लेकिन परमेश्वर जानता है।
Verse 31, therefore do not fear, you are more value than many sparrows.
और 31 वचन, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो।
I was just thinking about how much our heavenly father cares for all of us.
और मैं इस बारे में सोच रहा था कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी कितनी अधिक चिंता करता है।
He cares for us more than sparrows. He knows us.
और वो हमारी इन चिड़ियों से ज्यादा चिंता करते हैं, वो हमें जानता है।
He knows us more than what we know ourselves.
और वो परमेश्वर जितना हम अपने खुद को जानते हैं उससे अधिक हमको जानता है।
He cares even if one hair falls, he knows that.
और एक बाल भी अगर गिर जाता है वो जानता है।
And I was just thinking why I do not care, why I do not value our heavenly father like how he values all of us.
और मैं सोच रहा था कि कितना अधिक वो मूल्य करता है हमारी।
नहीं, why I do not care for our heavenly father like He cares for all of us.
और जैसा स्वर्गीय पिता हमें मूल्य करता है, हमारी चिंता है, हम उसके बारे में उतना मूल्य क्यों नहीं कर पाते?
And the reason is because we love our own self more.
और कारण ये है कि हम अपने आप को खुद को ज्यादा प्रेम करते हैं।
We have our own will and we think that it's possible with me and not with the heavenly father.
और हम अपनी खुद की इच्छा हमारे पास होती है और हम वो स्वर्गीय पिता वो खोगा या नहीं उस बारे में हम सोचते हैं।
And we have a heavenly father who cares for all of us more than sparrows, who can protect us, can feed us. But we do not place our trust, our value, we don't trust him more.
और हमारा इस स्वर्गीय पिता है जो हमारी चिंता करता है, जो हमको खिलाता है, हमारे सुरक्षा करता है, लेकिन उस चीज को हम भरोसा नहीं रख पाते।
It's because we think that it is only possible with us.
और ये इसलिए हम सोचते हैं कि ये केवल हमारे साथ ही संभव होता ऐसा होता है।
So I came across this image here where self-esteem versus Christ's esteem.
और यहाँ पे जो लिखा वो है खुद का भरोसा और यीशु मसीह पर का जो भरोसा है।
एंड व्हाट इज सेल्फ एस्टीम?
और जो सेल्फ एस्टीम, जो खुद पर भरोसा रखना, वो क्या है?
व्हेन यू बेस योर वैल्यू एंड वर्थ ऑफ व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू, दैट सेल्फ एस्टीम।
और जब आप और जो आपके बारे में सोचते हैं, जब उस पर आप मूल्य करना करते हैं, तो वो है खुद पर भरोसा रखना।
व्हेन यू फेवर और यू रिस्पेक्ट योर ओन सेल्फ, वन सेल्फ, सेल्फ रिस्पेक्ट।
और जब अपने आप को ज्यादा अनुग्रहित या अपने आप को और मूल्य करना चाहते हैं, उसको हम खुद पर भरोसा रखना कह सकते हैं।
That's self-esteem, and that's where we see that we value ourselves more than Christ.
और वहीं पर हम देख पाते हैं कि हम अपने आप को यीशु मसीह से ज़्यादा मूल्य करने लग जाते
हैं। That's why it's we see in our lives we do not trust God, we do not put our understanding or set our wills on Christ because we have so much in us. It's self-esteem.
और हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाते और पूरी तरह से जो परमेश्वर जो चाहता है उस चीज को हम नहीं समझ पाते।
But what is Christ's esteem? Is that self-esteem versus Christ's esteem?
और जैसे हमने देखा कि खुद पर भरोसा रखना यीशु मसीह पर भरोसा रखने के बारे में।
But when you derive your value and worth from Christ, that's Christ's esteem.
लेकिन जब अपना मूल्य, आपका महत्व हम यीशु मसीह से प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं यीशु मसीह पर भरोसा रखना।
Instead of seeing me as me, if you can see Christ in me, or if you look at a mirror and see it's not Titus but it's Christ there, that's Christ's esteem.
और जब मैं एक आईने में देखता हूँ, मैं खुद को अपने आप को नहीं लेकिन यीशु मसीह को देख पाता हूँ, उसको मैं कहूँगा कि वो यीशु पर भरोसा रखने के समान।
Value and worth Christ more than us.
और जब हम यीशु मसीह की तुलना, उसका मूल्य अपने खुद से ज्यादा करते हैं,
that's Christ's esteem. And then I was just thinking, that's one of the reasons why, I don't put a lot of trust, I don't, value Christ so much in my life.
और यही मैं सोच रहा था कि इसी के कारण हम ज्यादा महत्व या ज्यादा भरोसा यीशु मसीह पर नहीं रख पाते।
Because I think I am great.
और मैं इसलिए सोचता हूँ कि मैं महान हूँ।
And that's really a humbling factor in my life which I have to work on and think upon.
और ये बहुत ही विनम्र करने वाला अनुभव है जो मुझे अपने जीवन के ऊपर भी कार्य करना है।
And I hope many of you also realize that it's Christ in us and not me in us.
और ये हम सभी एहसास कर पाए कि वो हम नहीं लेकिन हमारे अंदर यीशु मसीह
उस एहसास को। It's not I but Christ in me.
मैं नहीं लेकिन मुझ में यीशु मसीह जीवित है।
Praise God.
स्तुति हो।
बिफोर आई स्टार्ट, मैं शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। गर्मी का मौसम किसको पसंद है? हु लाइक समर सीजन? मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, धूप में चलना किसको पसंद है? किसी को नहीं पसंद है ना। आज जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो ऐसी जगह है जहाँ पे जहाँ पे गर्मी कभी ख़त्म नहीं होगा, जहाँ पे कि जो आग है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। नर्क हिल के बारे में मैं आज थोड़ा बात करने वाला हूँ। हमें हमने हमारे लाइफ में बहुत बार सुना होगा कि ये करने से हम नरक में जाएंगे, ये करने से हम वाप मतलब जो भी करेंगे उसका एंड नरक में होएगा, जो भी गलत काम करने से. लेकिन क्या हम उसको सीरियसली लेते हैं? हम जब धूप में चलना पसंद नहीं करते ये टाइम पे, धूप में इतना हमें गर्मी लगता है, वो हीट हम लोग सहन नहीं कर पाते, तो जब हम नरक में जाएंगे तो हम क्या वो हीट सहन कर पाएंगे? हम वो सोचते नहीं हैं कभी. लेकिन हम जो इस दुनिया में जब रहते हैं तो जो हमें करना पसंद है हम भूल जाते हैं उस चीज़ को, वो एंड को जो हमारे लिए वेट कर रहा है वो हम भूल जाते हैं. बाइबल में बहुत सारे वर्स, न्यू टेस्टमेंट, जीसस क्राइस्ट आए ये धरती पे, उन्होंने मोस्टली सब मतलब बहुत बार नर्क के बारे में बताया है. मैथ्यू का स्टार्टिंग में ही चैप्टर 5 या 6 में उन्होंने बताया, सब बताया, भाई को गुस्से से देखना मतलब मर्डर करने जैसा है, और सब चीज़ का अंत एक ही है कि आप नर्क में जाओगे. वहाँ पे मतलब कभी शांत, कभी वो आग कभी बुझेगा नहीं, हमेशा रोते ही रहना है हमें. वो एक जीसस क्राइस्ट ने एक पैराबल बताया था, एक एग्जांपल दिया था. वहाँ पे एक गरीब रहता है एक आदमी, और एक अमीर आदमी रहता है. जो अमीर आदमी नरक में जाने के बाद उसको मालूम पड़ता है कि उसने गलत किया, और वो अपने भाइयों के लिए, अपने जो उसके फैमिली वाले नीचे रहते हैं उनको बोलते हैं कि उनको जाके बताओ. वो बोलते हैं कि एक एक बूंद पानी भी मिलेगा तो उसको अच्छा लगेगा. मेरे हिसाब से वो अभी तक शायद प्यासा होगा, उसको अभी तक पानी नहीं मिला रहेगा. नर्क, यीशु मसीह ने नर्क बनाया शैतान के लिए और स्वर्ग दूतों के लिए, उसने नर्क हमारे लिए नहीं बनाया. लेकिन हम इतना पीछे हट गए, इतना हम परमेश्वर से दूर हो गए कि हम भी उस जगह पे आ गए कि हमें नर्क में जाना पड़ रहा है. इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आया ताकि हम वो नर्क की आग से बच जाएं. वो जैसे लास्ट कॉन्फ्रेंस में जैक अंकल ने बताया था कि यीशु मसीह का वो जो 3 दिन का जो सफ़र था मरने के बाद का, वो क्या था, वो नर्क क्या था, वो नर्क का जो सज़ा था वो पूरा यीशु मसीह ने खुद के ऊपर ले लिया. यहाँ पे बहुत सारे वचन में ये रेवलेशन 21:8 में ऐसा लिखा है, बट कावर्ड्स, अनबिलीवर, द करप्ट, मर्डरर्स, द इमोरल, दोज हु प्रैक्टिस विचक्राफ्ट, आइडल वर्शिपर्स एंड ऑल लायर्स, देयर फेट इज इन द फायरी लेक ऑफ बर्निंग सल्फर, दिस इज द सेकेंड डेथ. तो ये डेथ से बचने के लिए यीशु मसीह आया. लेकिन हम फिर भी, हम जानने के बाद भी क्या नर्क है उसका मतलब मालूम है कि हम कैसे उस नर्क के पास जाएंगे, फिर भी हम बहुत बार हम भूल जाते हैं. हम सब जानते हुए भी उस नर्क की तरफ जाते हैं जिसने हमारे लिए जान दी. सोचो, परमेश्वर को मालूम है कि मेरा बच्चा नर्क में जाएगा, उस नर्क से बचाने के लिए उसने खुद का जान दिया, फिर भी हम वही करते कि हम नर्क में जाए, वो परमेश्वर को कैसा फील होता होगा. और वो छोड़ो, अब वो आपको दिमाग में नहीं आ रहा, पहले ये सोचो कि आप जब नर्क में जाओगे तो आपको कैसा फील होगा. आप इधर का गर्मी आप सहन नहीं कर पाते, उधर क्या करोगे. तो कुछ 3-4 वर्स है जो नर्क को डिस्क्राइब करता है. मैथ्यू 8:12 में, ही इज़ अ हेल इज़ अ प्लेस ऑफ विपिंग. मैथ्यू 25:41 में, हेल वॉज प्रिपेयर्ड फॉर सैटन एंड डीमंस. रोमन्स 1:18 में, विकेड पीपल विल रिसीव पनिशमेंट. ये सब हेल में जाएंगे, ऐसे मतलब लिखा है यहाँ पे, कौन जाएगा और कैसे. गॉड विल पनिश दोज हु डू नॉट टर्न फ्रॉम देयर सिंस. हम पापों से हम मन नहीं फिराएंगे तो हम नरक में जाएंगे. और जैसे मैंने फर्स्ट वचन पढ़ा था रेवलेशन 21:8, लास्ट में लिखा है एंड ऑल लायर्स. वो एक साइड में लिखा है एकदम, एंड ऑल लायर्स. हम क्रिश्चियन बन जाते हैं तो हमें लगता है कि व्यभिचार, एडल्ट्री करना बहुत बड़ा पाप है, मर्डर करना बहुत बड़ा पाप है, किसी को गंदी नज़र से देखना बहुत बड़ा पाप है. लेकिन हम झूठ को भूल जाते हैं. कभी कभी हम फ़ोन पे करते हैं, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ. कभी फ़ोन मतलब किसी भाई ने फ़ोन किया और हमें मालूम है कि अगर उसका फ़ोन उठाया तो वो बुलाएगा हमें, ये कुछ काम से या कुछ भी हो सकता है. तो इसलिए हम फ़ोन उठा के बोलते हैं, हाँ मैं अभी बाहर हूँ, मैं अभी हॉस्पिटल में, या मैं बहुत दूर हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा. ये झूठ हो जाता है. लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है. लेकिन वो झूठ भी, ऑल लायर्स, वो झूठ भी हमें नर्क के आग में लेकर जाएगा. तो मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं लास्ट वीक में, जब वीक शुरू हुआ मंडे के दिन, संडे रात को ही मैं जब सोच रहा था कि नेक्स्ट संडे क्या बोलना है, तो मैं इसी YouTube पे वीडियो देख रहा था और मुझे हेल्थ के बारे में मतलब अपने आप आया. वहाँ पे बहुत सारे लोग टेस्टिमनी दे रहे थे, तो उसमें से एक भाई ऐसा था कि जो कार चलाते हुए जा रहा था घर की तरफ, पास्टर था वो, तो वो कुछ एक्सीडेंट हुआ और उस कुछ मुझे सर याद नहीं ठीक से, लेकिन वो नर्क स्वर्गदूत उसको लेकर गया, उसकी आत्मा को निकाल कर लेकर गया और उसको नर्क दिखाया, और उसने वहाँ पे देखा कि बहुत लोग रो रहे हैं, जो इंसान खुद का शरीर खा रहे हैं, अपने खुद से जैसे खा रहे हैं, लेकिन वो वापस क्रिएट हो रहा है उसका बॉडी, मतलब कुछ उधर शांति नहीं है, सब रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं। तो स्वर्गदूत उसको बोलता है कि ये जगह तेरी थी, मरने के बाद जब तेरा न्याय होता तो इधर ही आता, लेकिन जब तू गाड़ी चला रहा था तूने तू परमेश्वर से माफ़ी मांगते हुए आ रहा था और बोल रहा था कि मुझे बचाना, मेरे पापों को क्षमा करना, तूने तेरी अभी तक वाइफ या कुछ तो बहन थी उसको अभी तक क्षमा नहीं किया, उसको क्षमा कर और उसको वापस भेजते हैं। अब ये कहानी सच है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उससे ये सीखा कि एक छोटा सा पाप भी जो हमें लगता है कि वो कुछ भी नहीं है, जैसे कि झूठ बोलना कुछ भी नहीं है, वो हमें एंड में उधर ही लेके जाएगा जहाँ पे हम नहीं जाना चाहते हैं। तो और बीच में मंडे के बाद मैंने कुछ सोचा नहीं था क्या बोलना है क्या नहीं, लेकिन कल रात को वापस जब मैं मम्मी पापा सो रहे थे अपने रूम में, मैं वापस उधर गया तो मम्मी सुन रही थी कुछ वचन, उसमें वापस हेल के बारे में ही बताया। तो और मैं तब से सोचा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में जानते ही नहीं हैं, और नर्क के बारे में तो उन लोग को ऐसा लगता है कि नर्क और स्वर्ग किसने देखा है मरने के बाद। तो मेरी यही कोशिश है कि उन लोग को मैं नर्क के बारे में बताऊं और उनको परमेश्वर यीशु मसीह के पास लाऊं ताकि वो उस नर्क की आग से बच जाए, क्योंकि हमारे यीशु मसीह का भी वही इस धरती पर आना मतलब वही मोटिव था कि हम बच जाए उस नर्क से। थैंक यू।
So yeah, I want to speak on content on what Titus was sharing about, you know, on how caring our God is.
उस बारे पर बात करना चाहता हूँ जिस पर टाइटस ने बात किया कि कितना अधिक हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है।
I don't know why I always get such funny thoughts, you know, either late in the night or either early in the morning, nothing during the day.
और कई बार दिन में नहीं लेकिन सुबह उठने के बाद या रात को ऐसी मजाक वाली बातें आती है।
So yeah, last night we had some guests at home, so when all of them left,
और कुछ मेहमान हमारे वहाँ आए थे और सब चले गए,
I'd gone to my bed and you know I was just thinking about, you know, since dad has left town I've been really ऐसा very tight on some situations.
और जब मैं सोने गया तभी पापा भी नहीं थे तो बहुत कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत ही मैं एक समस्या जैसा और बहुत ऐसा महसूस कर रहा था।
सो या लाइक नाउ सिंस आई हैव टू गेट एडमिशन फॉर फर्स्ट ईयर आई बीन रियली थिंक अबाउट कॉलेजेस देयर फी स्ट्रक्चर्स आई बीन कंडीशन यू नो देयर इज समथिंग विद इन मी दैट्स ऑलवेज इरिटेटिंग मी अबाउट।
और अभी मुझे जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना है वो फी स्ट्रक्चर और सारी बातें ये चीज़ें मेरे भीतर से मुझे एक चिंता में मुझे कर रहा था।
यू नो इट्स लाइक अ स्मॉल लाइक व्हेन यू गेट सम काइंड ऑफ पोक इन योर फिंगर एंड यू नो वेरी इरिटेशन इट डजंट वांट टू रूम इट।
और वो ऐसे होता है कि छोटा सा जब तुम्हारे हाथों में कुछ लग जाता है और आपको बहुत ही वो फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन लाता है।
सो सो लास्ट नाइट आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्चेस ऑफ सम कॉलेजेस अराउंड टाउन।
और पहले पिछली बार मैं कॉलेजेस के बारे में रिसर्च या खोजबीन करने लगा।
आई वाज सो ईगर अबाउट इट यू नो आई एम लाइक आई नीड टू गेट दिस डन फास्ट अदरवाइज यू नो सर्टेन सर्कमस्टेंसेस कैन टेक प्लेस व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर Everything.
और मैं बहुत ही आतुर था कि इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरह से कर दूँ, उसका फी स्ट्रक्चर क्या है, कॉलेज सारा सब कुछ है।
सो या वी ऑल नो दिस पैसेज इन मैथ्यू 6 फ्रॉम 25 अबाउट नॉट टू वरी, बेसिकली इट टेल्स अस फ्रॉम स्टार्टिंग देयरफॉर आई टेल यू डू नॉट वरी अबाउट योर लाइफ व्हाट यू विल ईट और ड्रिंक अबाउट योर बॉडी व्हाट विल यू वेयर यू नो वी नो दिस इट गोज आई थिंक अप टिल द लास्ट वर्स विल स्टडी फॉर अबाउट बेसिकली अबाउट नॉट वरिंग अबाउट थिंग्स।
और यहाँ पर मत्ती 6:24-25 से आगे लिखा है कि तुम खाने पीने या पहनने की चिंता मत करो, अंत तक मतलब ये चिंता के बारे में कि परमेश्वर चिंता करता है उस बारे में लिखा हुआ है।
And about not worrying, you know, unless we don't have that faith and trust in God, you know, we will keep on worrying about things and we'll get reckless.
और जब तक हमारे ऊपर परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा नहीं तब तक हम चिंता करते जाएंगे और विश्राम के बिना हो जाएंगे।
एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी यू नो फ्रॉम द लास्ट 1 month यू नो सिंस डैड हैज लेफ्ट आई बीन रियली यू नो टेंस्ड अबाउट मेनी थिंग्स आई बीन नॉट यू नो एबल टू आई डोंट नो आई कैन नॉट लाइक यू नो बिफोर व्हेन डैड वाज अराउंड आई वाज अ वेरी चिल्ड आउट पर्सन लाइक आई बीन नॉट मिक्सिंग अराउंड विद मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स लेटली I've been like, okay, yeah, evenings I'm trying to sleep off, not go out.
और जब पहले पापा थे तभी बहुत ही मतलब आराम से मैं मेरे जीवन को जीता था, लेकिन अभी जब पापा एक महीने से नहीं थे तभी बहुत सारी चिंताएं कॉलेज के बारे में, फ्री स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी चिंताएं मेरे मन में आ रही थी.
सो यार लास्ट नाइट व्हेन आई जस्ट ओपन बाइबल आई वेंट टू दिस पैसेज आई वाज लाइक व्हाई डू आई नीड टू वरी अबाउट सच थिंग्स व्हेन यू नो वी हैव अ फादर हु आर्ट इन हेवन ही कैन ही इज आई डोंट नो आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस बट या व्हाई शुड आई वरी अबाउट सच थिंग्स वी ऑल नो द ग्रेट miracles that God has done in each one of our lives and
aur parmeshwar jab main kal vachan mein se kuch pad raha tha ye protsahit kiya ki sach mein parmeshwar hai wo pita hai pita ke saman jo meri chinta karta hai to mujhe kisi bhi baat ki chinta karne ki zarurat nahi hai.
So yeah, this was about not worrying and then you know this during the week I was just having a chat with all my friends. He's a Catholic guy, a Roman Catholic.
और पूरे एक सप्ताह पिछले सप्ताह के अंदर मेरे एक रोमन कैथोलिक जो मित्र हैं उसके साथ मैं बातें कर रहा था.
फर्स्टली आई रियली थैंक द चर्च यू नो फॉर दिस दीज अपॉर्चुनिटीज दैट वी एज यूथ हैव टू कम अप एंड स्पीक.
और सबसे पहले इस मौके के लिए मैं धन्यवाद इस कलीसिया में देना चाहता हूँ कि जवान होने के नाते जो हमको मौका दिया जाता है बताने के लिए
टू स्पीक आउट आवर हार्ट द बर्डन्स दैट वी हैव इनसाइड
और जो हमारे दिल में है उस बातों को बांटने के लिए जो मौका दिया जाता है.
आई वाज स्पीकिंग टू अ गाय एंड ही वाज सेइंग they don't even have you know they can't even go up to an elder and you know speak about a burden
aur wahan pe us mere mitra ne kaha ki unke paas aise azadi nahi hote ki kisi vadil ya unke paas jaye aur apne dil ki baat bataye.
For them Sundays is like around 9 o'clock church starts and gets over by 10:30 11
aur raivar unke liye aisa hota hai ki 9 ya 9:30 baje aur 10:30 baje samapt ho jata hai.
They just sit on the seat and stare at somebody who's blabbering on the mic over there
aur wahan par wo baithenge nahi lekin piche jaakar khade reh jayenge.
So when the guy was speaking I had you know that gratefulness in my heart you know and there was something that joy that I had within me you know I was like I'm really fortunate to be in such a church.
और जब मेरा मित्र मुझे बता रहा था मेरे मन में एक अच्छा एक बहुत ही बड़ा एक आनंद था और मैं सोच रहा था कि मैं बहुत ही सौभाग्य मानता हूँ कि मैं ऐसे कलीसिया का भाग हूँ.
You know it's like feeling special.
और ये कैसे कि तुम अपने आप को एक विशेष मानते हो.
सो आई होप यू नो आई रियली ट्रेजर दिस अपॉर्चुनिटी दैट गॉड हैज गिवन अस
और ये जो मौका प्रभु ने दिया उसका मैं मूल्य कर पाऊँ सच तरीके में.
एंड यू नो वी नेवर फॉल अपार्ट फ्रॉम द चर्च
और कभी हम कलीसिया से दूर ना जाएं.
वी ऑल यू नो एज वी ऑल नो वी ऑल शेयर द सेम स्पिरिट एंड We are led by the same spirit in church.
और जैसे हम जानते हैं कि हम एक ही आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं.
So yeah, Lord has been really grateful to me, you know.
और प्रभु मेरे जीवन में बहुत ही भला रहा.
So yeah, thanks and you know, thanks for this opportunity too. It's really grateful. It's like once in a month, but still, you know, we can still come out and speak out. It's a really great thing.
और इस मौके के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ. महीने में एक बार मिलता है, लेकिन बहुत ही मैं धन्यवादी हूँ.
And I hope yeah, rest of our youth to take this opportunity and you know, really speak out.
और दूसरे जो जवान है उसका आप फायदा उठा के इसमें भी आप वो कर सके.
थैंक यू.
धन्यवाद.
फ्यू मंथ्स अगो आई हैड वॉच दिस वीडियो बाय संदीप पुनन
और कुछ महीने पहले मैंने इस वीडियो को देखा था जो संदीप पुनन से था.
एंड द टॉपिक ऑफ दैट वीडियो वाज द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ
और उसका शीर्षक ये था कि मेरे जीवन के उत्तम दिन.
सो आई ही वाज रिलेटिंग इट बेसिकली टू द लाइफ ऑफ डेविड
और वो जो वो बता रहे थे वो दाऊद के जीवन से उसको संबंधित कर रहे थे.
But this has been something on my mind since the time I watched this video about what's the best day of my life.
और जब मैंने उस वीडियो को देखा उसके बाद मैं सोच रही थी कि मेरे जीवन के अच्छे और उत्तम दिन कौन से हैं.
The issue is I've had so many good days.
और ये बात ये है कि बहुत सारे अच्छे दिन हैं.
But how do I value these good days?
लेकिन उस अच्छे दिनों का मूल्य किस प्रकार मैं कर सकती हूँ?
There have been so many wonderful vacations I've been on. There have been such amazing times with my folks at church. And there have been days when Christ has revealed something in me.
और ऐसे कई उत्तम समय रहे हैं जहाँ पे मैं वेकेशन में गई हूँ, अद्भुत समय मेरे परिवार कलीसिया के साथ, और कई समय ऐसे भी रहे जहाँ परमेश्वर ने कुछ मेरे जीवन में प्रकाशित किया.
But how do I distinguish and value amongst these days?
लेकिन उन चीजों को कैसे मैं अलग रीति से देख पाकर उसका मूल्य कर सकती हूँ?
Please don't get me wrong. I don't mean to say that having going for vacations and all is something bad or not important.
और वेकेशन में जाना या आनंद करना ये मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि ये बुरी चीज़ है.
I'm a person who loves vacations.
और मुझे वेकेशन बहुत पसंद है.
Sometimes I wish I could earn a living by just traveling and.
और कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ यात्रा करने के द्वारा अगर मैं कमा सकती हूँ तो बहुत अच्छा होता.
But that isn't reality.
लेकिन वो वास्तविकता नहीं है.
So I was in Bangalore, I think 2-3 weeks ago.
और दो तीन सप्ताह पहले मैं बैंगलोर में थी.
And my greatest fear up till today, no, up till that day was to sleep alone.
और वहाँ पे मेरा जो भय था, जो मुझे डर था कि मेरे रूम में सो पाना अच्छी तरह से.
So I prayed. That was my only option.
और मेरे पास वही एक उपाय था, मैंने प्रार्थना किया.
And I decided that when I sleep, I'll have all the lights on in my room. I'll keep it on.
और जब मैं अकेली थी, मैंने ये निर्णय लिया कि जब मैं सोऊंगी, सारे मेरे कमरे की जो लाइट है वो मैं जलाकर ही सोऊंगी.
Because I was so firm of the fact that if it's dark, I'm not going to get sleep only.
और मुझे पता था कि अगर अंधेरा होगा तो मुझे नींद नहीं आने वाली.
But it was the power of prayer.
और वो प्रार्थना का सामर्थ्य था.
5 minutes I lay down and I was like, what is this light? It's disturbing me. I need to put it off.
और पांच मिनट मैं सोई, उसके बाद ये जो लाइट थी वो मुझे बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा था, मैंने उसको बंद कर दिया.
And the same person who was so scared of dark had the best sleep ever.
और वहाँ पर जो मुझे अंधकार से इतना डर लगता था, वहाँ पर मुझे अच्छे से अच्छी नींद आई.
That's just because God revealed that He is in control and He is there with me. His angels are with me. There's nothing to worry about just sleeping alone.
क्योंकि प्रभु ने उस समय मुझे प्रकाशित किया कि वो नियंत्रण में, उसके स्वर्गदूत मेरे चारों ओर हैं, मुझे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं.
But then I started to think, why is it that days like these, where Christ reveals something, we just tend to forget those days. We don't value those. They are actually the best days of our life. Holidays and all there are, but these are the best days of our life when we can go and be an example and testify something. Why is it that we don't value? Why is it that I don't value these days?
और छुट्टियाँ, ये सारी चीज़ें तो अच्छी बातें हैं, लेकिन कई बार ऐसे अनुभव जहाँ परमेश्वर हम पर कुछ चीज़ों को प्रकाशित करता है, उन चीज़ों को हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं. उसका मूल्य हम क्यों नहीं कर पाते?
See, I think at the end of it all, it's about us doing the will of God. That's what's going to matter once our life on earth is over.
और जब हम इस संसार में हमारा जीवन पूरा होगा, तो यही बात मायने रखते हैं कि हम अपने जीवन के द्वारा इस धरती में परमेश्वर की इच्छा पूरी करें.
There's this verse in John 17:4.
और यूहन्ना 17:4 के अंदर ये वचन है.
It's basically Jesus that says, "I glorified thee on earth, having accomplished the work which thou has given me to do."
और वहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है.
And I was just thinking about it. Can I say this once my life on earth is done? Can I say that I glorified God? I did what He wanted me to do.
और क्या मैं ये वचन के अनुसार कह सकती हूँ, जब मेरा जीवन इस धरती पर अंत होगा, कि जो परमेश्वर ने मुझे करने को दिया है, उसे मैंने पूरा कर परमेश्वर की महिमा की है?
And I realized one way that I could do this is by valuing all the days that Christ reveals something in me, keeping it as a treasure to walk forward this life that God has given me.
और ये तभी मैं कर पाऊंगी जो परमेश्वर के जो कार्य मेरे जीवन में हुए, जो प्रकाशित उसने मेरे जीवन में, उस चीजों को, उन दिनों को मूल्य कर पाना.
This is something small, it's a very tiny thing, but I think it's a very important thing that we all value the days and really value, prioritize these days much more above the other days that we face.
और ये बहुत ही छोटी बात हो सकती है, लेकिन हम अपने जीवन को प्राथमिकता के रूप में इन दिनों को महत्वपूर्ण माने.
Like Stephen said, even I'm very grateful for the church that God has blessed us with a church where we can be open with our elders, we can be open with our youth.
और जैसे स्टीफन ने कहा, मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ वडिलों के लिए और जो हमको यहाँ पर मौका दिया जाता है.
लास्ट संडे आई हैड गॉन टू वर्क आफ्टर चर्च आफ्टर आवर मीटिंग.
और पिछले रविवार मीटिंग के बाद मैं काम पर गई.
एंड वी बेसिकली हैड अ स्मॉल मीटिंग एट ऑफिस.
और ऑफिस के अंदर एक छोटी मीटिंग थी.
सो बिफोर वी कुड स्टार्ट दैट मीटिंग, एवरीबॉडी वाज वेरी ईगर टू नो व्हाट हैपेंस एट दिस चर्च दैट यू हैव टू गो एवरी संडे.
और वहाँ पर मीटिंग स्टार्ट होने से पहले सारे लोग बहुत आतुर थे कि चर्च में होता क्या है कि तुम हर रविवार को तुम्हें जाना पड़ता है.
सो आई टोल्ड देम व्हाट हैपेंस एंड हाउ वी हैव आवर मीटिंग्स एंड हाउ वी शेयर. And then how we have our youth meetings where it's all of us of similar or more or less the similar age, we come together, we talk, we share something.
और तब मैंने उनको बताया कि हम कलीसिया में क्या करते हैं, हम आते संगति करते हैं और जवान होते हैं और हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं एक ही youth.
And they were so astonished.
और बहुत ही वो आश्चर्यचकित हो गए.
They just were looking blankly at my face like as if I'm saying something that's not even possible.
और वो मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित रूप से देखने लगे कि ऐसा भी संभव है क्या.
That's when I realized, you know, how important it is to be thankful for the church and more importantly the members in our church.
और इसलिए मैंने इस चीज़ को जाना कि कितना धन्यवादी हमको बनने रहना चाहिए कलीसिया के प्रति और जो सदस्य है कलीसिया के उनके प्रति.
थैंक यू.
धन्यवाद.
Like to turn to Matthew chapter 5.
मत्ती 5
verses 43 to 48.
उसका 43 से 48 तक.
Here we read about what Jesus says about love for your enemies.
यहाँ पे यीशु मसीह अपने शत्रु से प्रेम करने के बारे में कुछ कहते हैं.
So it said, you have heard it. It was said, you shall love your neighbor and hate your enemy.
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर.
But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you.
परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो.
So that you may be sons of your father who is in heaven.
जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो.
For he causes his son to rise on the evil और and the good.
और वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता.
And sends rain on the righteous and unrighteous.
और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ को बरसाता है.
For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same?
क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते?
If you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same?
यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते?
Therefore, you ought to be perfect as your heavenly Father is perfect.
इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है.
Over the last couple of months, I used to wonder, why do we have enemies? Why do we have people who trouble us?
और कुछ महीनों से मैं इस चीज को सोच रहा था, क्यों हमारे शत्रु होते, क्यों कुछ लोग हमें परेशान करते हैं?
And God brought this verse into my, you know, and shared that. Our enemies are the ones who help us to fulfill a promise of God, which God has given in His Word.
और वो हमारे शत्रु ही हैं जो परमेश्वर ने दिए हुए वायदे को पूरा करने के लिए सहायता करते हैं, जो वचन के अंदर लिखा है.
So I'm still learning, although I can't say that I've been praying for them always, but He's helped me to forgive them, and now I should start praying for them.
और मैं ये सीख रहा हूँ, और मैं प्रभु से अनुग्रह मांगता हूँ कि मैं उनको माफ कर सकूँ.
We also have a story in Genesis chapter 50.
और उत्पत्ति 15 के अंदर भी एक कहानी है.
The story of Joseph.
उत्पत्ति यूसुफ की कहानी के बारे में. 50. उत्पत्ति 50.
So here we read about most of us know the story of Joseph where his brothers sold him.
और हम सभी ये कहानी को जानते हैं, उसके भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया था.
And he was in Egypt and what all he went through.
और मिस्र में वो रहा और सारी परिस्थितियों से जो वो गुजरा.
He was put into the jail and there also he was there for around 2 years. He suffered a lot.
और बहुत ही वो उसमें उसने उसको दुख को सहा जब उसको कैदखाने में डाला गया.
But in the end, God had a plan for him and although he went through a lot of suffering, God did not abandon him.
और प्रभु अंत में उसके लिए एक योजना को रखता है, भले वो बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरा लेकिन परमेश्वर ने उसको त्यागा नहीं.
So we see in Genesis chapter 50 verses 19 and 20.
उत्पत्ति 50 19 और 20.
But Joseph said to them, do not be afraid, for am I in God's place? As for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring about this present result, to preserve many people alive.
यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है.
सो विद दिस आई सी दैट ऑल्दो देयर आर पीपल हु आर प्लॉटिंग अगेंस्ट यू और मे वांट टू डू इविल, गॉड टर्न्स द टेबल ऑन देम एंड गॉड विल यूज द इविल फॉर टू वर्क इन योर फेवर.
और भले कई ऐसे लोग होंगे जो आपके विरोध में युक्ति करते होंगे, लेकिन परमेश्वर वो सारी युक्तियों को आपके भलाई में बदल देगा.
सो टुडे आई कैन praise God for the enemies I have because they are fulfilling God's plan in my life.
और प्रभु का धन्यवाद उन शत्रुओं के लिए क्योंकि वो परमेश्वर के योजना को मेरे जीवन में पूरा करते हैं.
May God help us.
प्रभु हमारी मदद करें.
uh, आई थैंक गॉड एंड प्रेज माय गॉड. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि फिर से उन्होंने मुझे ये अवसर दिया यहाँ पे खड़े होने के लिए. ख़ास तौर से मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी चर्च के लिए जो इतना अच्छा अवसर हम जवानों को देते हैं. बट कई बार हम उस चीज़ को इनिशियली तो हाँ बोल देते हैं, बट जब टाइम आता है तब बोलते हैं नहीं 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 नहीं. तो मैं मेरे जीवन में ख़ास तौर से ऐसी चीज़ें, लास्ट संडे जैसे कहा था कि तुम्हें यूथ संडे के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैं सोच रही थी हाँ हाँ तो मैंने बोल दिया, लेकिन जब वो पूरा हफ्ता बीत गया बट अभी संडे आ गया, अब मैं क्या बोलूँ, तो मैं यही सोच रही थी. तो ख़ासतौर से मैं धन्यवाद करती हूँ जैसे प्रभु ने मुझे और मेरे हस्बैंड को अभी बाइबल स्टडी के लिए जाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ. तो मेरे जीवन में मैं ख़ासतौर से यही विचार कर रही थी कि क्या मैं बोलूँ क्या मैं बोलूँ. तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही थी हफ्ते में प्रभु ने मुझसे क्या बातें की, क्या मैंने सीखा. तो मैं जो लास्ट ट्यूसडे जो हमने बाइबल स्टडी में जो वचन अबू अंकल ने शेयर किए थे लास्ट टू लास्ट ट्यूसडे में, वो चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी कि कितने बार वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं फिर भी मैं समझ नहीं पा रही थी. लेकिन जैसे अंकल ने हमें समझाया था वो सारे वचन के द्वारा, जैसे हम पढ़ रहे थे लास्ट ट्यूसडे कोलोसियंस 3:1-11 हमने पढ़ा. लेकिन जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मुझे प्रभु ने मुझसे बातें की वो वर्स 6-10 तक है. Because of these things, the wrath of God is coming upon the son of disobedience, in which you yourself once walked when you lived in them, but now you yourself are to put off all this anger, wrath, malice, blame, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. So मैं ये वचन के बारे में सोच रही थी. अंकल ने हमें बताया था कि कई बार हमारे जीवन में वो जो प्रभु का प्रकोप, जो प्रभु का गुस्सा हम अपने आप में आने देते हैं, कब, जब हम परमेश्वर के वचन का आज्ञा नहीं पालन करते हैं. तो मैं मेरे जीवन में देख रही थी कि सही में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे नया जीवन दिया, मेरा उद्धार किया, मेरे परिवार का उद्धार किया. हम कहाँ थे जब वो, मैं अपने पिछले दिन याद कर रही थी कि कितनी तकलीफ़ों में थे, वो परेशानियाँ, वो बीमारी, काफ़ी सारी चीज़ें थी. लेकिन अब प्रभु ने हमें नया बनाया है. फिर भी आज भी कई बार हम उस चीज़ों को भूल जाते हैं अपने जीवन में, और सारी चीज़ें वो फिर से, वो बुरी चीज़ों में फिर से, वो बुरे जो नहीं करना चाहिए वो पाप, वो हम सारी अपने जीवन में करते हैं. तो प्रभु ने सही में मुझे बताया कि नहीं, हमें ये सब जब तुम करोगे तो प्रभु का प्रकोप, प्रभु का एंगर तुम्हारे ऊपर आएगा. और स्पेशली ये फिल्थी लैंग्वेज आउट ऑफ योर माउथ, ये वर्ड मेरे दिल को बहुत टच हो. कई बार मतलब हम सोचते भी नहीं कि हम अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं. कई बार हम, अंकल बताते हैं, कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं कि परमेश्वर आपने ऐसे हस्बैंड को क्यों दिया. मैं कितने जब झगड़े में कई बार मैं ऐसे बोलती हूँ, हाँ क्यों तुम आयो ऐसे करके. तो वो चीज़ें मैं अपने आप में सोच रही थी कि नहीं, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए. अंकल ने बताया परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी रखा है वो बहुत अच्छा रखा है. तो कई बार हम ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो हमें लगता है हम ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है ये गलत है. और एक चीज़ थी, सेकेंड चीज़ वर्स 9, डू नॉट लाई टू वन अनदर सिंस यू हैव पुट ऑफ The old man with his deeds. तो मैं मेरे बारे में सोच रही थी कि मैं कितना झूठ बोलती हूँ, स्पेशली मेरे ऑफिस वर्क प्लेस पे, जो मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है, उसमें झूठ बोलना ही रहता है. बट अंकल ने बताया कि हमें वो झूठ भी, वो प्रभु का प्रकोप हमारे अंदर वो लेके आएगा. तो मुझे, मैं अपने आप में सोच रही थी कि कई बार ऑफिस के काम की वजह से मैं अपने कलीग से लेके मेरे जो भी पेशेंट से लेके हर एक लोगों से मैं कई बार झूठ बोल देती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि वो झूठ कुछ नहीं है, वो तो लाइक मैं कर रही हूँ ना काम, लेकिन वो झूठी है. और फिर जहाँ तक जैसे ट्यूसडे मीटिंग ख़त्म हुई, आंटी और रूथ आंटी और लीसी आंटी, सॉरी लीसी आंटी, हम लोग बातें कर रहे थे तो आंटी बता रही थी जब बच्चे छोटे रहते हैं तो कई बार पेरेंट्स बोलते हैं अरे खाना खा ले नहीं तो वो पुलिस आ जाएगा, खाना खा ले नहीं तो वो आ जाएगा, तो वो सारी चीज़ें मैं मेरे लाइफ में, हाँ कई बार मैं भी अपने जीवन में सोचती हूँ कि हाँ हम लोग कितना झूठ बोलते हैं, मतलब हमें जब हम छोटे रहते हैं तो हमें अपने बच्चों को कैसे वो छोटा झूठ जो शुरुआत है वो शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें सही में प्रभु ने मुझसे बातें की कि आने वाले समय में भी जब आगे कुछ हमारा जो लाइफ होगा उसमें हमें वो झूठ से हमारे बच्चों की शुरुआत नहीं करनी है, जो भी है सच्चाई से हर एक चीज़ें अपनी लाइफ को स्टार्ट करना है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ।
There's one more youth over there waiting, you know. Youth at heart, not at age, but dying to you know, really share something. I'll call Brother Rajesh.
Parmeshwar naam ka dhanyavaad deta hu. सचमुच में बहुत अच्छा लगा एंड जैसे सब लोग बोला कि आज दिन है, आज मौका है सबके लिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता है कि ये सब हर दिन मौका है, इट्स अपॉर्चुनिटी एवरी डे, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड फॉर जस्ट वंस इन अ मंथ और एज अ यूथ संडे, इट्स एवरी डे, इट्स ओपन फॉर एवरी वन, सो एवरी वन शुड टेक द अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली ऑन दिस डे कम फॉरवर्ड. So that was there in my heart and I was in my spirit unable to control, so I said let me just go and talk and second thing I really loved aaj mujhe bahut hi acha laga sabse pehle to Matthew chapter 10 verse 5 wahan pe ek cheez aisa likha hai ki 25 verse 5 mein wahan pe aisa likha hai ki The bridegroom was delayed and they all lay down and slept. We sab so gaye. This is something to connect to our spiritual life. Jaise ki sab logon ne share kiya is baat ke upar. Something to connect to ki hame sona nahi hai. We have to be awake and not to sleep. We all know that the coming is very close. Aur hamara jo atma ko humko jaage rakhna hai, hame usko neend mein nahi dalna hai. और जैसे कि हम अगर भजन संहिता 121 में पढ़ते हैं, यू सी अबाउट व्हाट आर गॉड इज़ लाइक, 121 भजन संहिता में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है कि हमारा जो परमेश्वर है वो सोता नहीं है, वो जागते रहता है. 121 का भजन संहिता में हम देख सकते हैं, ही डज नॉट स्लम्बर, ही डज नॉट स्लीप एंड ही टेक्स केयर, ही इज़ वॉचिंग एट अस दैट वेदर वी एंड इज़ वो हमारे ऊपर चौकस रहता है कि हम नहीं गिर जाएँ, दैट्स अ रीज़न ही इज़ अवेक. तो हम कैसे होना चाहिए, हाउ आर वी नीड टू लिव आर स्पिरिचुअल लाइफ, हमारा आत्मिक जीवन कैसा रहना है. एंड और एक वचन लेना चाहता हूँ, फर्स्ट थेसलोनियन्स चैप्टर 5, फॉर वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ लाइट एंड ऑफ डे, हम लोग जो है ज्योति के संतान है एंड वी डोंट बिलोंग टू डार्कनेस, हम लोग जो है वो अंधकार को हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, उसमें ऐसा लिखा है और हमें सोना नहीं है. दैट्स रीजन वहां पे लिखा गया है आप उसका बाद वाला वचन में कि हमें चौकस रहना है एंड स्टे अलर्ट इट सेज, और हमें धीरज के साथ हम्बल के साथ वेट करना है. सो यही है कि हमारे आत्मा को हम सोने नहीं दें, और यही चीज़ मेरे को आत्मा ने मुझे स्पिरिट वॉज गिविंग मी बर्डन टू शेयर. So I thank God for that. I thank for the words which was shared throughout. It was encouraging for me. I take it for myself. And it is for every one of us. Don't think that this Sunday is a youth Sunday, so it's only for youth. Every Sunday is also youth Sunday, sister Sunday. Everyone can take the opportunity. So don't grieve your spirit. Apne atma ko, don't grieve your spirit. It should be alert every day. Because something from you will be encouraging to me and to every one of us. So I praise and thank the Lord in Jesus' name. Amen.
Thank God for what we heard today.
और जो बातें सुनी उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद.
the whole meeting, you know, like one thing that was coming to my heart and like spoke to my heart is about when Stephen came and spoke, like, you know, God is giving us an opportunity to speak, you know, to speak, come here and stand and speak something from our heart.
और पूरी सभा के दौरान एक चीज़ जो मुझे बहुत ही मुझे प्रोत्साहित करी कि जो प्रभु ने मौका दिया है उसको हम ले और यहाँ पे खड़े रह के जो प्रभु ने हमारे दिल में डाला है उसको हम बांटे.
द वर्क दैट गॉड इज डूइंग एंड हैज डन इन आवर लाइव्स.
और जो कार्य परमेश्वर कर रहा है और कर चुका है उन बातों में.
सम थिंग्स वेयर वी आर रियली वीक एंड कैन रियली स्पीक अबाउट इट. हियर आई वाज वीक बट माय गॉड मेड मी स्ट्रांग एंड आई कुड ओवरकम.
और हम ये कह सके कि कोई कोई जीवन के किस भाग के अंदर मैं निर्बल था लेकिन परमेश्वर ने मुझे मजबूत किया.
सी अबाउट व्हेन अ स्मॉल चाइल्ड व्हेन द फादर बाइज अ प्रेजेंट फॉर हिम.
वो जब छोटा बच्चा होता है उसका पिता उसके लिए एक तोहफा जब खरीदता है.
सो ही विल टेक दिस प्रेजेंट एंड ही विल रन अराउंड हियर एंड से दिस इज व्हाट माय फादर गेव मी.
और वो बच्चा तोहफे को लेकर हर जगह भागेगा और कहेगा कि ये तोहफा मेरे पिता ने दिया है.
ही इज सो हैप्पी इन हिज हार्ट एंड लाइक नो दिस नो आई really didn't know, like I didn't even, there wasn't in my heart like God my father would give me, but my father gave me this.
Aur wo itna anandit dil mein hota hai ki wo har ek ko jaakar batayega ki mere pita ne ye diya hai.
So when Jesus says unless and unless you don't become like a little child, you know, that happiness is there, you know, that thankfulness is there, you can't, you know, enter the kingdom of God.
Aur Yeshu ne yahi kaha ki jab tak hum chote bachcho ke saman nahi ho jate, hum dhanyawadi nahi ban jate unke prakar.
So this youth Sunday is something like that, you know, like when we come and we really share something from our heart, the work that God has done.
और ये रविवार जो जवानों का दिन जो हम यहाँ पर आते हैं और प्रभु ने जो हमारे जीवन में किया उस बारे में हम बांटते हैं.
We'll be happy to speak about it, you know.
और हम ये आनंद से बताते हैं.
And not even the youth Sunday, but even the normal Sundays when we come to church, you know.
और केवल जवानों के रविवार के समय नहीं लेकिन जब साधारण तौर से और भी रविवार को जब हम कलीसिया में आते हैं.
And the other Sundays open to all can come and, you know, share about what their father has done for them.
और दूसरे रविवार भी हर एक के लिए ये मौका है कि आकर जो पिता ने उनके लिए किया है वो चीजों को बांटे.
Bible says do not quench your spirit, you know.
और प्रभु वचन कहते हैं कि आत्मा को हम दुखाए नहीं.
But you know, like really give life to it.
लेकिन उसको हम जलते रखे.
So we God has spoken to us through lot of things, you know, like about the wise and the foolish virgins.
और हमने सीखा कि कैसे बुद्धिमान और मूर्ख कुमारी के बारे में.
We have heard about hell, you know.
नरक के बारे में हमने सुना.
Then Titus sharing about how God he loves us, how important we are to him.
और जिस टाइटस ने बताया कि कितने मूल्यवान हम परमेश्वर के लिए हैं.
And Brother Kiran shared about, you know, like having patience and being still and knowing that God is there.
और जैसे हमने सीखा कि कैसे हमको धीरज से देखना है कि और ये जानना है कि परमेश्वर है.
So many things we listen to, but you know, thing is how glad I am, you know, like in my heart.
और बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं लेकिन कितना मैं अपने दिल में आनंदित हूँ.
God, this is the place and you spoke to me and I have to work on it and you help me to work on it.
और परमेश्वर ये जगह पर आपने मुझसे बात की और मुझे इस पर कार्य करना है.
वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट जस्ट अबाउट लिसनिंग बट इट इज यू नो द इट्स द थिंग इट शुड वर्क इन आवर हार्ट्स इन आवर लाइफ.
और प्रभु का वचन केवल सुनना ही लेकिन वो कार्य वचन हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए.
इफ यू सी व्हेन द मीटिंग स्टार्टेड व्हेन रितेश शेड अबाउट द वाइज वर्जन फुलिश वर्जन सेज वन वर्स वर्स नंबर 5 इट सेज द ब्राइडग्रूम डिलेड बोथ वर रेडी. The wise virgins were also ready with the flask full, lamps full. But the wise virgins had extra oil in their flask. But both were ready, they're waiting. But it says the bridegroom delayed.
और वहाँ पर जैसे बताया गया कि कुमारी और मूर्ख कुमारी और बुद्धिमान कुमारी के बारे में कि जो दूल्हा था वो आने में देरी करता है.
So now like sometimes we think like everything is going perfect in our life, but sometimes you know God sends situations when you come to know. You know, there is something lacking in us.
और कई बार हमें लगता है हमारा जीवन बहुत सिद्ध चल रहा है लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियों को प्रभु बताता है जहाँ हम पहचान पाते कि कुछ कमी मेरे जीवन में है.
And you know, it's up to us. You know, they can go to God and say, God, this is my place. I am lacking here, and I want you to do a work on me.
और ये हमारे ऊपर है कि हम परमेश्वर को उस कमी घटी को दिखा और कहे कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन में काम करे.
Like when we say the church is the body of Christ.
और जैसे हम कहते हैं कि कलीसिया जो है वो यीशु मसीह के देह है.
वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ द चर्च.
और हम सब सारे भाग है उस कलीसिया के.
It's not necessary that we all are perfect, you know, like everybody is lacking something or you know, is weak in something.
और इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई सिद्ध है, लेकिन हमारे हर एक के जीवन में कोई ना कोई कमी घटी है.
So as a church, you know, we are to encourage each member of the body.
और कलीसिया के रूप में हर एक व्यक्ति जो कलीसिया का भाग है उसे हम प्रोत्साहित करना है.
That you know that this body be strong in Christ, not in you know, ourselves, but really being strong in Christ.
ताकि हम खुद मजबूत ना बनते जाए, लेकिन परमेश्वर की कलीसिया मजबूत बनती जाए.
You know in Kerala they have this boat races.
और केरला के अंदर ये जो नाव जो होती है उसके प्रतियोगिता रेसिस होती है.
You know, all these people who are rowing, you know, they have the oars and they are rowing. But there's one person who is, you know, is sitting on that mast.
Sitting on the mast, the front side, you know, the. अच्छा, वहाँ पे एक जो नाव जो चलाते हैं उसके आगे के भाग में एक व्यक्ति बैठता है.
And then he is speaking something, you know, loudly to encourage them, but they are rowing.
और जब जो वो नाव को खेते हैं उन लोगों से वो आदमी आगे बैठने वाला बातें करता है और प्रोत्साहित करता है.
एंड द वे एंड दे ऑल टुगेदर विद द पर्सन हु इज स्पीकिंग.
और जब वो जिस प्रकार करते हैं जो वो व्यक्ति जो बोल रहा है,
द ओज एंड ऑल दैट ना गो अकॉर्डिंग टू द वॉइस ही स्पीक्स, यू नो दे गो फास्ट.
और जैसे वो व्यक्ति बोलता है उनको प्रोत्साहित करता है उसी आवाज उसी
गति में वो. दे आर वन टीम, यू नो, दे टोटली वन टीम.
और वो एक ही एक झुंड होते हैं.
एंड यू नो एंड you I seen this in discovery, this race and how they are going ahead, you know, the speed they go ahead, you know.
Aur maine isko discovery mein dekha aur kaise wo gati ke sath aage badhte hain.
The same thing, you know, when we are together it should encourage each other, you know.
Aur wahi baat hamare jeevan mein ki jab hum sath mein hum ek dusre ko protsahit kare.
Shouldn't be quiet, you know, what I have to do or what I can say.
और हम शांत न रहे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ.
नो, शेयरिंग इज ओनली फॉर यू नो एल्डर्स और द पीपल अराउंड, बट नॉट मी.
और केवल वचन बांटना केवल अगुओं के लिए है या कुछ लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है.
इट इज शेयरिंग इज समथिंग लाइक वी आर बीइंग ग्रेटफुल टू गॉड, थैंकिंग गॉड एंड सेइंग दिस इज व्हाट माय फादर गेव मी.
और बांटना, वचन से बांटना ये है कि परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में किया है उस चीज को बताना.
सो आई रियली एनकरेज ऑल द चर्च, यू नो, लाइक टू when we get a chance, you know, you can really come ahead, be bold and really speak, you know, about what the father is doing in our lives.
aur yahi main nidarta ke ye protsahan dena chahta hu ki aap nidarta se aage aaye aur bataye kalisya ke sath baante ki pita ne aapke jeevan mein kya kiya hai.
may God really help us.
parmeshwar hamari sahayata kare.